संतप्त मन शांत हूं, समय सार परमागम की 198वीं, 199वीं और 200वीं का था, पेज नंबर 313 समय सार और पेज नंबर 165 समय सार अनुशीलन। गाथाएं पढ़ो। उदय विभागो विभिहो विभागो विभो कम्मानम कर्मों का उदय होकर उनका जो विपाक होता है, मैंने उदय में आना का उदय विपाक को एक ही बात है, वह अनेक प्रकार का जिन वर ये ही बनने दो। भगवान ने बताया है कि पुद्गल कर्म के उदय का विपाक अनेक प्रकार का होता है, भगवान ने बताया है, भगवान ने बताया है, इसलिए वो मेरे हो गए ऐसा नहीं है, उनका अस्तित्व इस जगत में है। पर मुझे क्या, नदुते मध्य स्वभावा, लेकिन वे मेरे स्वभाव नहीं है। अब कर्मों का विपाक अनेक प्रकार से कहा है, तो घात्या कर्मों का विपाक जो है वो संयोग रूप है, और घात्या कर्मों के उदय का विपाक है वो संयोगी भाव रूप है। तो सब ले लेना कि ये कर्म के उदय में संयोग संयोगी भाव मेरे जीवन में यद्यपि होते हैं, पर ये बात जिन्हें भगवान ने बताई है, सबक की वाणी में आई है, फिर भी ये मेरे स्वभाव नहीं है। अब इसमें दोनों बातें आ गई ना, परद्रव्य तो मेरे हैं ही नहीं, मेरे तो परभाव हैं, और रागादि हैं वो विकार भाव हैं, तो इन्हें तो कहते मेरे स्वभाव नहीं है, है ना। फिर तो दूसरा पुद्गल कर्म, राग जो है वो पुद्गल कर्म है, और उसका विभाग, उसके विपाक में जो भी स्थिति होती है वो भी मेरे स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं तो एक ज्ञायक जानक स्वभाव वाला हूं। तो इसमें थोड़ा मर्म है, एक तो ये अपन लगते हैं राग पुद्गल कैसे है, राग पुद्गल कैसे है, अध्यात्म में तो कहते ही आए हैं, लेकिन यहां कुछ अलग बात है। ये जो 148 प्रकृतियां द्रव्य की है ना, द्रव्य कर्म की, तो 148 प्रकृतियां भाव कर्म की भी हैं, माने जो जो कर्म है उसके उदय में जो जो भाव होते हैं विभाव है। मानव राग यदि वो जिस कर्म के उदय से राग होता है तो वो कर्म भी राग है, राग के उदय से, मैंने क्रोध के उदय से क्रोध होता है तो मन की है, इसमें तो आपको शंका नहीं है ना। फिर क्रोध के उदय में क्रोध होता, मान के उदय में मान होता, जैसा भाव में है ऐसा वहां द्रव्य में भी क्रोध नाम का कर्म है ना, मान नाम का कर्म है ना। तो जब इन सबको एक नाम राग कहते हैं तो राग नाम का कर्म भी है। तो हमको बड़ा अटपटा लगता है कि राग नाम का कर्म तो हमने सुना ही नहीं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते जो क्रोध नाम का कर्म है, मान नाम का कर्म है और उसके उदय में ये सब होता है। तो कहाँ क्रोध नाम का कर्म है, कौन सा कर्म है क्रोध नाम का कर्म है? मूल प्रकृति कौन सी है इसकी? उत्तर प्रकृति है ये तो, मोहिनी माने चारित्र मोहिनी है ना। तो मतलब जैसा ये गुस्सा आपको आ रहा ऐसा कर्मों में बिल्कुल प्योर पुद्गल का बना हुआ है, ऐसा ये क्रोध नाम का पुद्गल का बना हुआ कर्म अंदर बैठा है द्रव्य कर्म, और उसके उदय जब होता है तो आत्मा में जो राग भाव होता है, क्रोध आता है, वो भाव क्रोध है और वो द्रव्य क्रोध है। अब आगे तो ये ऐसा भी कहते हैं कि उसमें जो कर्म बंधेगा तो उसमें भी ऐसे भेद पड़ेंगे। फिर पहले तो प्रदेश बंद होता है पहले समय में, तो और फिर बाद में प्रकृति बंद होता है ना, तो प्रकृति बंद में वही बंटवारा होता है ना, तो वो तो कसाई के उदय के बिना पहले ही हो जाता है ना, क्योंकि स्थिति और अनुभाग जो उनमें पड़ता है वो कसाय से पड़ता है। योग पयडी प्रदेशा और थिदी अनुभागा कसाय दो होती, प्रकृति और प्रदेश बंद योग से होते हैं और स्थिति और अनुभाग बंद कसाय से होते हैं। तो ये कहते हैं कि पुद्गल कर्म है राग, उसके उदय ये परिणाम है, किंतु ये मेरे नहीं है, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। दूसरी पंक्ति दोनों छंदों की एक सी है। देखो अब देखो ध्यान दो, नदु में ते मध्य सहावा जानक भावो द्वहम एको, नदु एस मध्य भावो, थोड़ा सा फर्क है, जानक भावो द्वेग है मेको है ना। अब एवं सम्मा दृष्टि अपानम मुणदि, इस प्रकार सम्यक दृष्टि आत्मा को जानने के स्वभाव वाला जानता है ना। आत्मा को क्या जानता है? जानने के स्वभाव वाला जानता है। इस तरह ज्ञानी ज्ञानी जानते ज्ञायक स्वभावी आत्मा और कर्मोदयों को छोड़ते निज तत्व को पहचान कर, वो क्या है भाव है, वो निज तत्व है, तो उसको जो बाकी के जो चीजें हैं उनको उन्होंने कर्मोदय शब्द में डाल दिया, क्योंकि कर्म के उदय से होने वाले भाव है ना, तो उनको ज्ञानी आता धर्मात्मा छोड़ देते हैं। तो इन तीन गाथाओं में वेद विज्ञान की बात करी, वास्तव में वर्णादि और रागादि से, और उनसे भिन्न भगवान आत्मा को वो जानते हैं और इनको सब छोड़ देते हैं। इसमें दो पंक्तियां लिखना छूट गई हैं कि जे इसका आत्मख्याति में इस प्रकार का अर्थ किया, ये छूट गई और आगे आत्मख्याति दे दी सीधी। वो तो प्रेस की गलती है, छूट गई है इसमें है ना, आपने इन गाथाओं का अभाव आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, तो इतनी पंक्ति इसमें नहीं है। अरे संस्कृत टीका पढ़ते हैं, वैसे संस्कृत टीका में एक बात है बस विशेष, कि ऐसे आप 16 सूत्र बनाना जो इनकी स्टाइल पहले से चली आ रही है वही की वही बात, और बाकी तो जो मूल गाथाओं में है वही टीका में लिख दिया है। देखो पढ़ते हैं, कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव और राग नामक पुद्गल कर्म के उदय के विपाक से उत्पन्न हुए राग भाव मेरे स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं तो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। इस टीका की एक विशेषता यह है कि जो लोभ है उनने नहीं किया, कुंद कुंद ने, वो इनने कर लिया। उनने दो गाथाओं में बात कही थी, एक में पुद्गल कर्म और दूसरे में राग, और एक आता ये दोनों मैं नहीं हूं, और दो दफे कहा था ये मैं नहीं हूं। इनने दो दफे कहने की तकलीफ नहीं उठाई, उन दोनों को एक साथ कहके और दोनों गाथाओं की टीका एक साथ कर दी है, और इसलिए वो तीन गाथाएं एक साथ जिसे बोलते हैं ना, अब ये जानते हैं कि नहीं, जब दो गाथाएं एक साथ हों तो उन्हें क्या लिखा होता है, युग्मम, उसके ऊपर ऐसा लिखा रहता है युग्मम। तीन हों तो उसमें लिखा रहता है विशेषकम। फिर चार हों तो उसमें लिखा रहता है कुलकम। कुछ समझ नहीं क्या है, मैंने अपने यदि युग्मम लिखा है तो इन दो गाथाओं का अर्थ एक साथ निकलेगा, ऐसा अर्थ है उसका। विशेषकम लिखा है तो तीन गाथाओं का अर्थ एक साथ निकलेगा, और कुलकम है तीन चार पांच छह सात, और कितनी भी हों तो उन्हें बोलते हैं कुलकम। पूरा कुल का कुल है, एक ग्रुप है, ये पद्धति है इसमें। यहां इसमें छपा गया नहीं छपा मुझे मालूम नहीं छापा है, लेकिन एक नियम है, यहां जैसे 200 भी गाथा है ना तो यहां लिख देते हैं विशेषकम लास्ट में। अब क्यों, क्योंकि ये तीन का अर्थ एक साथ करना है। अमृतन ने आत्मघाती में कर दिया, इसलिए अपने को करने की जरूरत नहीं रही ना, लेकिन अमृतन को तो जरूरत थी ना, अमृतन कैसे करते। देखो भक्ताम वर्ग के शुरू के जो दो काव्य हैं वे युग्मम हैं, जानते हो आप, उसमें लिखा रहता है। क्यों है बोला, भक्ताम वर्ग तो सबने पढ़ा होगा ना, लगभग याद भी होगा। एक छंद में अर्थ निकलते ही नहीं है, वाक्य पूरा नहीं होता है ना। भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणाम मुद्योतकम, अब देखिए कोई क्रिया है ही नहीं, क्रिया की जगह पे सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह नमस्कार करके ये पद है। नमस्कार करता हूं लिख देते ना तो एक श्लोक अपने आप में पूरा हो जाता है। सम्यक प्रणम्य लिखा ना, सम्यक नमामि ऐसा कर देते तो फिर अर्थ निकल जाता। अब उन्होंने सम्यक प्रणम्य कहा यानी लप प्रत्यय लगाया, एक तो और लप प्रत्यय होते हैं ना जो करके, मैंने वाक्य को अधूरा छोड़ रहे हैं, इसलिए दूसरे छंद में ये वाक्य पूरा होगा। क्या है फिर पढ़ो दूसरा, जो स्तोष से प्रथमम जिनेन्द्रम, अब यहां आकर मैं पहले जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करता हूं, ये क्रिया करी है खत्म। तो वो जो पहले के ऐसे जिनका भक्त जो अमर मैंने देवता जी, बहुत बहुत पास हर स्थिति में ये बात मिलेगी। एक स्टाइल है कि देवता लोग नमस्कार करते थे तो कवियों ने अलग अलग कल्पना की है कि उनके वे मुकुट बांधे रहते थे, स्वधर्मिंद मान्य किया तो मुक्तों में मणियां जड़ी रहती थी और मणियों में प्रभा होती थी, और जब वे भगवान के चरणों में झुकते थे ना तो मुकुट भी झुकते थे और मणियां भी झुकती थी, तो वहां एक आभा बिखर जाती थी। तो इसका वर्णन हर जो भक्ति काव्य वाले ने किया है, भक्तावरण तो है। हमने सबसे पहले धर्म संध्या में पढ़ा था तो उसमें ये बात आई थी, और उसमें तो ऐसा लिखा था कि तुम्हारी नख नख में से भी ज्योति निकली, यहां तुम्हारे जो नख हैं उनमें से ज्योति निकली, और वहां मुकुट की मणियों में से भी ज्योति निकली, और वो आपस में टकराई। क्या, और टकराने से मान लो उन मणियों की ज्योति को फीका कर दिया तुम्हारे नखों की ज्योति ने, ऐसा लिया है। और जगह अलग अलग है, भक्तामर में भी भक्त जो अमर माने देवता लोग, उन्होंने अपने चरणों में माथा झुकाया तो मौली मनो मुकुट में लगी जो मणि प्रभा नाम आ गया ना, उनको उद्योत कम आया ना, उन मणियों की प्रभा को उद्योत कर दिया, माने खाए के नखों की ज्योति ने, माने नखों की ज्योति उन मणियों की ज्योति से ज्यादा महान थी। भक्त जो अमर माने देवता, भक्ताम मरह प्रणत, उनने नमस्कार किया तो एक उन्होंने एक चित्र बनाया। कैसा वर्णन है, ये खड़े नहीं, वे ऐसा नमस्कार करे प्रणत। तो मऊगुली माने मुकुट, उसमें लगी जो मणियां, उसकी प्रभाराम, उसकी प्रभा को उद्योतन करने वाले हैं चरण कमल जिनके, है ना, युगम युगादौ, युग की आदि में जिनके चरण कमलों को इंद्रों ने नमस्कार किया था, ऐसा। तो ये जो भगवान आदिनाथ की स्तुति है, ये इसका कैसे पता चलता है? कहीं भी आदिनाथ का नाम तो आता नहीं ना, ऋषभ देव का नाम आता है। क्यों? तो जी युगादौ और प्रथमम जिनेन्द्रम, इसमें से आदिनाथ निकला, बस खत्म। क्या निकला, कहां से निकला ये? युग की आदि में और प्रथमम जिनेन्द्रम, पहले जिनेन्द्र। अब इसकी जगह कर दो कि द्वितीयम जिनेन्द्रम, तो अजितनाथ की स्थिति हो जाएगी। अंतिम जिनेन्द्रम, तो महावीर की स्थिति हो जाएगी। तो और कोई अंतर नहीं है। देखो ये भक्तांबर को जो इतनी महिमा मिल गई, देवागम स्रोत के सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो मिल गई वो इसलिए मिल गई कि वो बिल्कुल 24 तीर्थंकरों की कॉमन स्थिति है। उनमें कोई तुम्हारे बाप का नाम ये था, माँ का नाम ये था, ये कोई स्थिति है? त्रिशला नंदन फलाना फंदन, कुंडलपुर में जन्म लिया है, अयोध्या भी नहीं रहा जाते, ये क्या है? आज सुबह तुम पूजा कर रहे थे, मैं सुन रहा था, उसमें कोई ऐसी पंक्ति आ रही थी, तो मैंने कहा इसमें क्या है, बिल्कुल 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 बेकार, इसका कुछ अर्थ ही नहीं है कि मुझे मजा आ रहा है, ऐसा था क्या था? मुझे बहुत मजा आ रहा, मुझे बहुत मजा आ रहा, मुझे बहुत मजा आ रहा है, जो तेरे को मजा आ रहा है, ये भगवान की स्तुति हो गई है। यानी उन्होंने प्योर जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की, ऋषभ देव की, मैंने माँ बाप का परिचय, अयोध्या नगर का परिचय, ये एक एक कुछ नहीं दिया, ये इसकी महानता है। ख्याल में ना, और जो लोगों ने निकाल लिया ना, ये छंद सर्प का है, और ये छंद बीमारियों का है, और ये छंद युद्ध में जीतने का है, उन्होंने एक एक को एक एक छंद बनाए हूं, और सब लोग उस छंद को बोल बोल के समझते हैं मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। बहुत से लोग भक्तांबर के 45वें छंद को रोजीना पाठ करते, एक छंद को, कहोगे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्या? लेकिन उसने क्या लिखा है बता, देखो, उद्भीत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचाम दशाम मुपगता स्तुत जीवता सा, और मतलब इसमें तो लोक की महिमा बताई। उद्भूत भीषण माने उत्पन्न हुए रोग, कौन से? भयंकर, भयंकर रोग, उद्भूत भीषण। अब ये तो भयंकरता बताई, अब नाम बताए जलोदर। ये जलोदर कौन सा रोग होता है? ये पेट में पानी भर जाता है, तो आजकल तो इंजेक्शन से फटाफट निकाल देते हैं, पुराने जमाने में वो साधन नहीं थे, तो लेने के देने पड़ जाते थे, पेट फट जाता था, आदमी मर जाते थे। उद्भूत भीषण जलोदर, फिर दूसरा रोग कौन सा? भार भुगना, ये कौन सा रोग है? जो खुद समंत भद्र को हो गया था, माने जो खाए वो एक मिनट में पच जाए, जैसे भार में कितना ईंधन डालो और जल जाता है और वो अग्नि भभकती है, तो जो जठरा अग्नि और भभके, ज्यों ज्यों खाओ त्यों त्यों भभके, उसको भार भुगना, पहले जलोदर फिर भार भुगना, और सोचाम दशाम उपगता स्थित जीवता, बीमारी दो के नाम लिए, और वो ऐसी हालत हो गई, सोचाम दशाम उपगता, उसकी हालत सोचनीय हो गई कि भाई अब क्या करे, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या करे, बचेगा कि नहीं बचेगा, सोच्याम दशाम उपगताश्च्युत जीवतासा। फिर तुम नाम नाग मनुजा तुम नाम मंत्र मनिजम मनुजास्परंती, तुम्हारे नाम का स्मरण जो मनुष्य लोग करते हैं तुल्य रूपा मर्त्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा, तो जो मर्त्या में जो मर रहा है जो मरणशील प्राणी है मन है तो उसका मर्त्या माने मनुष्य ही, जो मरण के उन्मुख है ये मकरध्वज तुल्य कामदेव के रूप के समान हो जाते हैं। बस ये कॉमन बात है क्या, अब वो समझते हैं कि अब बिहार में जाके मैं कामदेव बन जाऊंगा फटाफट फटाफट खूब पढ़ते रहते हैं मंत्र है, अभी आज तक तो कुछ हुआ नहीं होगा। जितना भी सब देखा कि तुम नाम नांग दमनी युद्ध में विजितम वो युद्ध में जीत, मतलब एक बहुत कॉमन कथन है तुम ऐसा करो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे भक्तों को ये तकलीफें नहीं होती हैं, अगर विगत बंद भया भवंती कि वो भय से रहित हो जाते हैं, ये कहां लगा बीमारी मर जाती है, बीमारी का भय खत्म हो जाता है। तो ऐसे मेरे कहने का मतलब ये है, अब देवागामी स्त्रोत्र वगैरह बिल्कुल न्याय भरा हुआ है, अब ना तो आजकल भक्तांबरे वाले स्त्रोत्र रह गए और ना देवागम वाले रह गए, और ये नाम कहां से आ गए, जिनका कोई भाव ही नहीं होता। तो आपका क्यों बार बार कहते हो, क्यों बार बार कहते हो, इसलिए कहते हैं बार बार, एक तो नए नए विद्यार्थी हर साल आते हैं इसलिए कहते हैं, और दूसरा इसलिए कहते हैं कि वो बाप ने बेटे से कहा कि एक गिलास पानी लाना, तो वो नहीं लाया, तो फिर कहा एक गिलास पानी लाना, फिर नहीं लाया, फिर तीसरी दफे कहा एक गिलास पानी लाना, तो फिर भी नहीं लाया, फिर सुनता नहीं है, है? फिर कहा फिर भी नहीं लाया, बहरा हो गया है क्या, है? क्या हुआ के? मेरी बात सुनता ही नहीं है जे, कि कौन कहता नहीं सुनता हूं, आपने कहा तो एक गिलास पानी लाना, बोलो अब पाठ पूरा सुना दिया ना, रिश्तमन्ना जी को सुना दिया ना, याद हो गया ना, नहीं सुना कैसे कह रहे, लेकिन तुम बार बार जो कह रहे कि सुनते नहीं हो, गलत बात तो ये है। अब तुम ये बताओगे तुम कब तक कहोगे, उन्होंने कहा जब तक एक गिलास पानी नहीं लाएगा तब तक कहेंगे, जब तक तुम ऐसी स्तुतियां बंद नहीं करोगे तब तक मैं बराबर करता रहूंगा, जब जब मेरे कान में पड़ेगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, क्योंकि भविष्य में तो कम से कम ही रह जाए ना इसमें, इसमें लोग तो समझे ना, तो तुम ऐसी गलती करो तो वह गलती तुम्हारी ही मानी जाए, उसमें मेरा नाम साथ में नहीं जुड़े, अपने पास नहीं है, बढ़िया नहीं है, नहीं है तो तुम बना लो ना, उसमें क्या है, आखिर विद्वान हो गए शास्त्री हो गए, बढ़िया बढ़िया बना लो, बहुत हैं वैसे और भी बनाई जा सकती है मेरे कहने का मतलब है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम ईश्वर बाद की पोतक, सुबह से शाम तक मैं सारी क्लासें सुनता हूं देखता हूं यहां, तो बस कर्तावाद का कितना निषेध आता है, वो शाम को विद्यार्थी का प्रवचन होता है ना, उसमें भी कर्ता कर्म अधिकार चल रहा, तो एक कर्ता नहीं है भोक्ता नहीं है, कर्ता नहीं है भोक्ता नहीं है, इतनी जन्मों से मार पड़ती है लेकिन वो असर क्यों नहीं होता है, किताबें लिख गए भी लिख गए, अब वो जब किताबों में छप गया, मैंने फिर किताब के द्वारा निकलवाई, कदाचार द्वारा निकल गई, कुछ निकली कि नहीं निकली, अपनी किताबों में आ गई थी ना कुछ ऐसी भक्तियां, जब देख किताबों में क्यों छपी हैं, तो मैंने एक दफे निकलवाई थी अभी, मतलब निकली नहीं ना, मैंने सब बहुत पक्के हैं, अभी किताब को उसको बिल्कुल ऐसा ऑर्डर दे दो कि छपाएं नहीं दोबारा, वखर मखर मैंने नहीं छपाना अपन को, बस क्यों इसको जिसने ईश्वरवाद की पुस्तक हो ऐसा व्यवहार है, तो ऐसे व्यवहार को खड़ा क्यों करना जो बार बार ये व्यवहार भाष है, वास्तव में तो व्यवहार नहीं है। व्यवहार है समझ, इसलिए कह देते पुराने कवियों में भी कहीं आ गया है, समझे ना। कभी उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी किसको प्रमाणिक और अप्रमाणिक घोषित करेंगे, लेकिन वो बात वो हमें किसने लिखी उससे मतलब नहीं है। हमें तो इससे मतलब है कि उसमें बिल्कुल जो भगवान का स्वरूप है स्तुति में वो आना चाहिए। भगवान की स्तुति भक्ति हो, और तुम लोग यह संकल्प करो तो तस्वीर मैं लिख दूंगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वो कहेंगे नहीं नहीं साहब, वो सबको बांटना पड़ता है लड्डू थोड़े थोड़े, लेकिन पूजन है, कोई देवता की कोई पूजा नहीं करना है। कोई करता है युगल जी की, कोई करता है डॉक्टर भारेल की, कोई करता है सच्चिदानंद उनकी, कोई करता है मतलब राजमल जी पवैया की, कोई करता है रविन्द्र जी की, कोई करता है मतलब ऐसे सब देवसाज की तो नवल क्या गए हो गए। अब हम क्यों हमें पक्षपात का आरोप ना लग जाए, इसलिए हम तो बदल बदल के सब उनने नित्य नियम पूजन बनाई थी कि जो नियम से नित्य करना चाहिए, अब उसे हम छोड़कर छोड़ भी देते हैं और दूसरी कर लेते हैं, क्यों हमें बदलने की इतनी आदत है कि जो जो बिल्कुल अनिवार्य है डेली उसको भी हम बदल देते हैं। हमारा बस चला तो दवाइयां भी बदलने वही वही दवाई कैसे खाना अच्छा नहीं। अरे दवाई तो जो है वो खानी पड़ेगी तो खानी पड़ेगी, डॉक्टर ने कहा जिंदगी भर खानी पड़ेगी तो वही खानी पड़ेगी, ऐसे बदल नहीं सकते आप। तो इसलिए कहते देखो अंतिम कहा था एवं सम्यक दृष्टि अपानम मोहदी, सम्यक दृष्टि आत्मा को ज्ञान स्वभाव जानता है और उदयम कम विवाकम मोहदी जो तत्व ज्ञान अंतो, और ये कर्म के विपाक जो है उनको औदिक भाव जानकर उनसे अपने को अलग कर लेता है। अपन ये इसका अर्थ पढ़ रहे थे ना, तीन पंक्ति बने, कर्मोदय के विभाग से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव और राग नामक पुद्गल कर्म के उदय के विभाग से उत्पन्न हुए राग भाव मेरे स्वभाव नहीं है। तो दो वाक हो गए ना, सुना अंठानवेवी गाथा का कौन हुआ 198 का, कर्मोदय के विभाग से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव 98 और राग नामक पुद्गल कर्म के उदय के विपाक से उत्पन्न हुए राग भाव 199 का था, ये मेरे नहीं है और क्योंकि मैं तो संकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। जो दोनों में जो हेतु दिया है उन्हें दो दफे, उन्हें एक दफे में निपटा दिया, दो गाथाओं का अर्थ हो गया। वो युगम से अपन आगे बढ़े थे है ना वाक्य को। अब ये कहते हैं राग के स्थान पर द्वेष मोह, दूसरी गाथा के मामले में क्रोध माया मान लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय सूत्र चक्षु, ये 16 पद बनाना, 16 सूत्र बनाना। अब ये 16 सूत्र अपन बना सकते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। देखो पोगल कम अमे रागो, पोगल कम अमे क्रोध हो, कोई क्रोध है ना शुरू में, पोगल कम मम मानो, पोगल कम मम माया, ऐसा मनाते जाए। एक राग की जगह वो बदला तो इतने 16 सूत्र बन जाएंगे, और उनकी टीका भी ऐसे ही बना लेना। माने ये सब भी मेरे स्वभाव भाव नहीं है। देखो ये जो चीजें हैं ये भी बना के भी रख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अध्यात्म में पुनरावृत्ति दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि ये हमें सारी जिंदगी करना है ना। हमें तो रोजाना ही सामायिक में करना है, रोज ही नहीं सोचना है कि ये भाव में नहीं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। पहले समझने के लिए करना है, तो समझ जाए तो याद रहे, भूल ना जाए तो हमारा बार बार विकल्प उधर जाता है ना। आप देखो कितनी जरूरत है इसकी, महसूस आप करो। इतनी इतनी सुबह से शाम तक धंधे की मार पड़ती है कि मैं करता नहीं हूं भोगता नहीं हूं, फिर भी वो कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव कितनी गहराई से हमारे अंदर जमा है और वो हर चीज में कितना गहराई से व्यक्त होता है। तो जब समझो कि जब तक वो ढीला नहीं पड़े तब तक ये रटाई हमें करनी है ना। हमने कोई चीज रट रट के तैयार करी और भाग्य से वो गलत याद हो गई, कभी हम सही समझते नहीं थे और गलत रट ली। अब सुधार के नई बताई तो नई कितनी दफे रटने पड़ेगी, जितनी दफे पुरानी रटी है उतनी दफे तो कम से कम रटनी पड़ेगी, और ज्यादा है जब तक वह भूल न जाए। क्यों? क्योंकि बार बार जवान वहीं चली जाती है, बार बार जवान वहीं चली जाती है। युगल जी ने अपनी पूजन में से दो छंद बदल दिए। क्यों बदल दिए, क्या बदल दिए, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। अब लोगों को पुराने याद हैं, देख के तो कोई पढ़ता नहीं पूजन, पूजन में तो देख के पढ़े तो उसे तो सेकंड नंबर पुजारी माना जाता है। जो बराबर बनी आंख देख के पढ़े वो ही अपने को बड़ा अच्छा माना जाता है पुजारी। जो पंडित बिना देखे पढ़ता रहता है वो बड़ा पंडित माना जाता है, देख देख के पढ़ता है वो छोटा माना जाता है। तो फिर वो बराबर पुराना वाला बोलता रहता है, पुराना वाला बोलता रहता है। बताई दूं क्यों वो बदली है उनने, अब विद्वान लोगों को तो बता देता हूं कि पहले जो उन्होंने देवसाज गुरु पूजन लिखी थी उसमें ये अग्नि जल दिब्बों से भूख मेरी शांत नहीं हुई और जे ऐसे हैं जे ऐसे हैं, उनकी कहीं कहीं निंदा भी आई थी। देख के इस जड़ दीपक से, इस जड़ है दीपक जड़ है, अब वो तो ज्ञान का प्रतीक है जड़ जड़, तो वो कहते ये भी एक तो भगवान की निंदा भी नहीं होनी और उन द्रव्यों की भी निंदा नहीं होनी। प्राणी पूजने यही थी ना कौन के कितना बढ़िया जल है, कितने बढ़िया चंदन है, कितना ये है। मैंने एक दफा सुनाया था ना, लोचन सुरसना ग्रान मुरुत साय के करता रहे, तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इसका अर्थ आता है, आता है कोई बताएगा? तो फिर मुझे बताना सार्थक है, वैसे मुझे इतना जानना है कि एक वो क्या लिखा, भगवान की भक्ति है हो रही ना, तो भगवान की बात होनी चाहिए थी। लेकिन कभी क्या कह रहा है, ये जो फल है ना जो मैं आप हाथ में लिए हूं, ये इतने बढ़िया हैं कि आंख से देखो तो आंख तृप्त हो जाती है, जवान में मुंह में पानी भर आता है। लोगचन सुरसना और ज्ञान, इसकी इतनी बढ़िया गंध है कि नाक फड़कने लगती है, और माने हृदय इसमें उत्साह भर देते हैं। तो ये फल की प्रशंसा है भगवान की नहीं। देखो लोचन सुरसना ग्राण और उत्साह के करतार हैं कौन, सो फल चढ़ावत ऐसे फल, मो पे न उपमा जाय बरनी, ये अनुपमेय है सिद्ध भगवान जैसे, इनकी उपमा भी मैं नहीं बता सकता हूं। वो सरस बिल्कुल रस से भरे हुए हैं, वो फल गुण सार हैं, फलों में जितने गुण होते हैं वो सब इनमें हैं। जो हाथ में लिए है ना वो रूखी रूखी बादाम सड़ा नारियल, मंदिर के कौन से चावल कहलाते हैं जो घर में कभी खाने में नहीं आती हैं, वे सब लिए हैं और उनमें बोले जा रहा इतना बढ़िया बढ़िया। तो हमको ऐसा लगा, युगल जी को लगा सबसे पहले कि ये भगवान की स्थिति है कि फल की। तो हम लोगों ने ये प्रयोग किया, जो बदली है पूजने उनमें ये प्रयोग किया कि हमारे पास दो लेने चार लेने मिली हैं तो हम भगवान के ही गुण गाएं। और इन फलों की इनकी चर्चा जब आवे तब ये किसी काम के नहीं है, इस रूप में ही आवे। क्यों? अब तक अग्नि जल द्रव्यों से भूख न मेरी शांत हुई, तो अभी बेकार हो गए ना, जल इनमें कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तुम्हारी दवाई को कोई फायदा नहीं है, बदल दो, फेंक दो इस दवाई को, इसलिए मैं इनको छोड़ने आया हूं, समर्पण करने आया हूं। तो अब वो उनने ऐसी तो बनाई, तो पहले तो वे छंद सब ऐसे ही थे शुरू से अंत तक। अब वो लोगों को बहुत पसंद आया तो सब लोगों ने उसी लेन पर पूजा लिख दी, हमने भी, मैं भी उसमें था। समझ लो थोड़ी प्रेरणा वहां से मिली और फिर अपन ने उसको विस्तार दे दिया। अब बाद में उन्होंने उनका क्या विचार बदला कि नहीं साहब इनकी सामग्री की निंदा नहीं होनी चाहिए। अब सुने ना, तो उन्हें जब उन्होंने कहा तो बड़े दादा ने किताब लिखी थी जिन पूजन रहस्य, तो उसमें सब मैंने ये सब स्टाइल बताई थी कि पहले ऐसी थी पूजनी, अब ऐसी हैं, अब ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो जब वो बात ज्यादा फैली, यानी वो जो सोची थी वो ही जब चर्चा में आई, लोगों ने वैसी वैसी बना दी, तो नवानुम उनको कब क्या लगा तो वो ये कहने लग गए कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा आपकी पूजन में है, हम तो वहां से देख के लिखी, अब आप कहने लग गए ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने उनमें से दो छंद बदले, एक साथ दीपक का है, एक नई वेद का है। क्यों दीपक कोई जड़ दिए हैं, दिए हैं, दो बदले हैं हम, तुमको जिनने नई पढ़े उन्हें तो पुराने मालूम ही नहीं है ना। तो दो छंद बदले उन्होंने। अब दादा की जो पूरी किताब थी और लाखों बट गई, वो 3 लाख करीब बट गई लोगों में, वो सब जो पूजने वो बाकी सबने लगा लिया। हम तो सब मान रहे हैं कि भाई वही सही है, अभी भी हम आज भी मान रहे हैं, अभी भी हम क्यों बदलेंगे। उनका विचार बदल गया तो बदल गया, भले ही हमारे उनसे हमें प्रेरणा मिली हो, लेकिन वो बात तो हमें सही लगी ना, सही है। तो हमने उनसे कहा भी कि आप ये बदल दोगे तो सारी धारा जो चल पड़ी है अब वो तो बदलेगी नहीं। और ये और सिद्धों का कि सुनने वाले ने दो गलती थी, उनने गलती मान ली और बदल दी, तो ये तो बदल देते हैं। ये जब पता चले की बातें सामने आएंगी, लेकिन नहीं, उनको तो तीव्रता से वो भाव आया है। अब वो हजारों किताबें बाल बोध पाठमालाओं में छप गई, छप गई ना पूजने, और सब बच्चों बच्चों को याद हो गई, यहां हो गई। अब बहुत दिनों तक वो बदला बदली नहीं हुई, तो बार बार हमारे पास पत्र आए कि हमारी सब जगह बदलाव नहीं, बंद कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, और हमारी पूजन हटा दो, आप अपनी डाल दो। भैया हमें क्या बदल देंगे, हमें क्या लेना देना है। लेकिन वो जो एक समीक्षा चली गई बड़े दादा की लिखी, वो तो लोगों के दिमाग में आ ही गई ना। अब दोनों ही पक्ष हैं, तो वो भी आपका पक्ष था, ये भी आपका पक्ष था, तो पहले आप उसे ही समझते थे, गलत समझते। तो उन्होंने उनमें इसी टाइप का बदलाव किया है, यानी वो उसकी तो प्रशंसा ही होनी चाहिए। तो फिर ये नई धारा चलाने का कोई मतलब ही नहीं था, फिर तो वही थी। तो वो छंद अब लोगों को पुराने याद थे, नए अभी भी ऐसे ही चलता है, बुजुर्ग लोगों को तो वही याद है, वही चलता है, ऐसा चलता है। अभी तुम रिसर्च करने के काम आएगी कभी ये चीजें, तुम लोग करोगे तो है ना है? तो समझ में आएगी क्या है। देखो ये अपने गाथा है 16 कैसे बनानी, वो तो आपके ख्याल में आ गया ना। अब इस अब ये अंतिम गाथा का अर्थ है। इस प्रकार सम्य दृष्टि अपने को जानता और राग को छोड़ता हुआ नियम से गैराग और ज्ञान वैराग के संबंध है। अपने को जानता इससे ज्ञान संपन्न है, और राग को छोड़ता इससे वैराग संपन्न है। हेतु आ गया ना। इस प्रकार सम्यक दृष्टि 198वीं गाथा में सामान्यतया और 199वीं गाथा में विशेषतया बताए गए प्रभाव स्वरूप सब भावों से स्वयं को भिन्न जानकर त्रंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी आत्म तत्व को भली भांति जानता है। ये आया था ना इसमें कि सामान्य से और विशेष से गाथा में है, देखना जरा टीकई में है। हाँ टीकई में है, गाथा में नहीं है। उनने दो बातें डाली इसमें, सामान्य और विशेष। देखो इन्होंने उत्थानिका में डाली कि सामान्य से और विशेष से। अब ये सामान्य विशेष की बात इनने डाली अमृतचंद्र ने। अब जयसेन के जमाने तक आते आते लोगों की समझ में नहीं कि सामान्य क्या और विशेष क्या, तो उन्होंने सामान्य और विशेष का अर्थ समझाया। बहुत अच्छा अर्थ है, न्याय की भाषा का अर्थ है। विवक्षा का अभाव उसका नाम सामान्य है, और विवक्षा लगाना उसका नाम विशेष है। इसमें लिखा है तुम्हारी किताब में, देखो ये सबसे नीचे की पंक्ति 166 पेज में पहला पैरा पढ़ लो। यहां सामान्यता और विशेषतया शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनका क्या आशय है। तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं के उपरांत एक गाथा आती है जो आत्मख्याति में समागत 198वीं गाथा के समान ही है। उसकी टीका में आचार्य देवसेन सामान्य का स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं, विवक्षा के अभाव को सामान्य कहते हैं। ये उनकी तरफ से लिखा हुआ है पूरा, विवक्षा के अभाव को सामान्य कहते हैं। अब ये क्या, ये न्याय की भाषा है, दुनिया की समझ, विवक्षा का अभाव क्या, कि जब किसी बात को विवक्षा लगा दो तो वो विशेष कथन हो जाता है, और विवक्षा नहीं लगाओ तो वो सामान्य कथन होता है। जैसे कह दिया राग छोड़ो, तो ये सामान्य कथन हो गया। फिर कह दिया क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, माया छोड़ो, लोभ छोड़ो, तो ये विशेष हो गया। रक्षाय छोड़ो, ये सामान्य हो गया। और फिर क्रोध मान माया लोग एक एक का छोड़ने को कहा, वो विशेष हो गया। बस इतनी सी बात है। अब सामान्य से वो विशेष से, माने सामान्य जब हम कहते नहीं सब विद्यार्थियों को आ जाना है, फिर कहते देखो सासी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हर एक को आना है, तो तुमने सब कह दिया था ना, लेकिन उसमें से लोग अर्थ निकाल लेते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं विशेष कथन सामान्य से बलवान होता है। आगे बहस हुई, तो लिखना पड़ा आचार्य को सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, सामान्य शास्त्र से विशेष कथन बलवान होता है। और नीचे की पंक्ति बहुत खतरनाक है, निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खरबसाणवत, विशेषों के बिना का सामान्य गधे के सिंह के समान होता है। तो क्या, अब जो जो दृष्टि का विषय तो सामान्य है ना, सामान्य अभेद एक बड़ा, अब ये सामान्य इसको कहते गधे के सिंह के समान, तो लोगों में बहुत घबराहट छूटती है, सुनने लगे मुंशियों में पूरा न्याय शास्त्र उन्होंने पढ़ा नहीं है, इसका तो मेरे को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। सबसे पहले मेरे को गुरुदेव के सामने बैठकर क्लास लेने का मौका मिला, पहले वो क्लास रामजी भाई लेते थे और गुरुदेव पूरी क्लास में बैठते थे और सुनते थे। रामजी भाई की उम्र बहुत ज्यादा हो गई और वो उनका बोलना शब्द निकलना मुश्किल हो गया, तो ये बात आई कि ये क्लास दूसरे को देना चाहिए, उनकी बंद करो, बंद किया तो लालचंद भाई को वो क्लास दी गई। और एक साल लालचंद भाई ने ली, लेकिन उसमें बहुत इतना वो हुआ कि गुरुदेव के मुंह से कुछ ऐसे कमेंट्स निकल गए कि भाई ये बात सही नहीं थी, ये सही थी, तो वो लालचंद भाई ने कह दिया कि मैं तो नहीं लूंगा, मुझे नहीं लेना। उस वक्त बहुत डर लगता था लोगों को कि गुरुदेव के सामने यदि हमने बोला किया और उनने एक आध हमारी गलती बता दी तो आज तक ये हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए लोग बोलते नहीं थे। जब मेरा नंबर आया मेरे आगे आप लोग उन्होंने ले लेंगे, तो लोगों ने हमको बताया कि देखो ये तुम्हारी भी वही हालत होगी, हमें तो कोई डर नहीं है, कितनी भी गलती निकाल दें गुरुदेव, गुरुदेव के सामने गलती नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी वो निकल जाएगी ना, गलती गलती जो होगी वो निकल जाएगी ना, रहेगी तो नहीं ना, इसलिए हमको तो हम तो लेंगे। फिर हमने नए चक्र की क्लास ली, नए चक्र पे हम उस वक्त लिख रहे थे, अपने यहां तो किताबें थी नहीं, भारतीय ज्ञान पीठ से किताबें मंगाई, दिव्य सुहा प्रकाशक नए चक्र, और उसकी 500 किताबें वहां से मंगाई, सोनगढ़ में हर एक के हाथ में दी और वो क्लास लगी। वो 20 दिन तक गुरुदेव बराबर बैठ के सुनते थे, तो उसमें ये प्रकरण आया और मैंने ये छंद सुनाया कि निर्विशेषो ही सामान्यम भवेद कर विषाणुवत्। बस उस बात लोगों ने खूब उस पर नमक मिर्च लगाया, जो गिराना चाहते थे कि देखो ये तो दृष्टि के विषय में पर्याय को शामिल करते हैं और कहते हैं पर्याय के बिना दिव्य तो गधे के सिंह के समान है, होता ही नहीं है, वो बहुत बहुत बातें आएंगी। तो कैसे क्या हुआ निपटा वो मामला, एक दफे मैं सुना चुका हूं, अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन जब भी ये प्रकरण आता है तो मुझे वो याद आ जाती है। यही बात है सामान्य से और विशेष से, तो जो इसमें लिखा ना जैसे नाचार्य ने कहा है, इस प्रकार तत्व को जानता हुआ स्वभाव के ग्रहण और प्रभाव के त्याग से उत्पन्न होने योग्य अपने वस्तुत्व को प्रकट करता हुआ सम्यक दृष्टि जीव कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए समस्त भावों को छोड़ता है, इसलिए वह नियम से ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होता है। अब ये सामान्य विशेष का अर्थ आपको बता दिया कि कैसे, ये वो सामान्य विशेष नहीं है, वो ये बस विस्तार से कथन करना भेद विभेद से उसका नाम विशेष, और संक्षेप में करना उसका नाम सामान्य। सामान्य कथन और विशेष कथन, इसके लिए उदाहरण देते हैं ना, पीत पद्म शुक्ल लेसा द्वित्री शेषेशु तत्वा सूत्र में लिखा है कि 16 स्वर्गों में वहां कौन लेस्या होती हैं, तो लिखा पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या द्वि त्रि शेषेशु, दो युगलों में माने 4 स्वर्गों में पीत लेस्या, फिर त्रि माने 3 युगलों में माने 6 स्वर्गों में पद्म लेस्या, और बचे कितने 4, तो उसमें शुक्ल लेस्या। अब जब राजभार तक में सर्वा सिद्धि में इसके विस्तार से कथन किया तो उसमें ऐसा लिखा कि पहले और दूसरे में पीत लेस्या और तीसरे और चौथे में पीत और पद्म मिला के, ऐसा लिखा। माने ये जो लिखा था तत्वा सूत्र के सूत्र में इससे थोड़ा अलग हटके था, तो वहां प्रश्न किया कि मूल सूत्र में तो ये बात है नहीं और आप कह रहे कि ये है, तो आपने कैसे लिखा कि वो सामान्य कथन था और हम विशेष कथन लिख रहे, तो दो में सत्य कौन है? तो लिखा सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे, समझे ना, तो उन्होंने कह दी विशेष कथन वो बलवान होता है, इसलिए हम कह रहे हैं वो सही है, सुनना, इसके मूल सूत्रकार कह रहे हैं वो झूठ और तुम कह रहे हो वो सही है, आप समझ गए ना कि हाँ ये ऐसी पद्धति है सामान्य से कथन करने की और विशेष से कथन करने की, कि जब उसमें नहीं है तो आप सूत्र जी की टीका में नहीं लिख सकते, आप अपनी अलग किताब लिखो उसमें लिख देना, क्यों नहीं लिख सकते? अरे हम टीकाकार हैं, हम अनुवादक नहीं है। अनुवादक में और टीकाकार में अंतर समझ में अब आया कि नहीं आया? वे तो आप लिख दो अनुवादक लिख दो, आप टीकाकार क्यों लिखते हो? माने मक्खी की मक्खी मार देना वो अनुवादक, वो कहते हैं कि जो इसका डिटेल है हम वो बताएं तो टीकाकार है, नहीं तो जरूरत क्या है? संस्कृत की हिंदी करना है, हम भाषा परिवर्तन, आप सोनभ में नया शब्द निकाला, अनुवादक भी नहीं, अनुवादक भी उन्हें बड़ा लगने लग गया, तो उन्हें भाषा परिवर्तन कहा है? 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 एक भाषा से दूसरी भाषा बदली है, अब कभी कभी ये भी बड़ा लगने लग जाएगा तो और कोई निकालेंगे, कोई आदमी बड़ा ना हो जाए ये लगता है। तो उन्होंने कहा है, टीका है भाई साहब, हम इसका डिटेल लिखेंगे, तो फिर इसमें तो है नहीं, आया कहां से? अन्य आगम में है ना, धवल में है, फलानी जगह फलानी बताई उनने, तो अन्य आगम में यहां क्यों लिखते हो? क्यों, यहां संक्षिप्त कथन है, वहां विस्तार कथन है, संक्षिप्त से विस्तार कथन बलवान होता है, हम टीका लिख रहे हैं, हम वो विस्तार से कथन लिखेंगे, उसमें क्या है? यदि एक ही एक लेन लिखनी होती तो हम टीका काय को लिखते, तो श्लोक बार तक कितना बड़ा कैसे बन जाता, कितना कितने अंक प्रमाण है श्लोक प्रमाण है, बहुत बड़ा है। राजभार तक इतने इतने बड़े ग्रंथ लिखे हैं, तो यदि वो सूत्र से ही बंधे रहेंगे तो ये विस्तार नफर नहीं आएगी, ये बात तो ये सब बातें लिखी जाती हैं। अब देखिए तीसरे अध्याय में वहां तो सिर्फ नरकों के नाम लिखे, फिर हम नाम लिख के छोड़ दें, तो उन्होंने विस्तार से वर्णन कर दिया, नरक 7 होते हैं, इतने होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ये होते हैं, सब सब उन्होंने बता दिया, इसकी स्थितियां भी डिटेल करके एक एक की बता दी, ऐसी नहीं एक एक पाथड़े की बता दी, पाथड़े समझते हैं कैसी, आप जानते हैं बिल हैं, कितने बिल हैं नरकों में, 30 लाख कितने हैं जो भी हैं, तो उनमें खन है मकानों के, पहले में 7वें नरक में 1 खन है बस, बिल बोलते हैं उन्हें, और फिर 6वें में 3 हैं, फिर 5वें में 5 हैं, फिर 4थे में 7 हैं, फिर 3रे में 9 हैं, फिर दूसरे में 11 हैं, और पहले में 13 खन है, 13 मंजिल के मकान है, 13 मंजिल है पहले में, उन्होंने वो भी बता दिए, वो भी बता दिया किस खन में कितनी आयु उत्कृष्ट है और कितनी जगन है, इन्होंने उत्कृष्ट 33,000 जगन 10,000 फिर उन्होंने एक एक नरक की बताई उत्कृष्ट जगन, फिर एक एक पाथरे की बताई उनकी भी सब लिखा है राजवान तक में विस्तार से कथन किया है। पर विस्तार से कथन करने की हमारी पद्धति है, इसलिए एक टहते रहने की बात नहीं है, हो गया ना। अब इसमें तो वो कलश आ गया जो बहुत मार्मिक कलश है, जिसे अपन कल पढ़ेंगे। तो उसके पहले दो गाथाएं जैसे इनकी टीका में हैं, जब लगभग यही अर्थ जो अपन ने इन तीन गाथाओं में है लगभग वही उसमें है, फिर भी कल उसे पढ़ेंगे।